आस्था ने अरमान की ओर एक नज़र देखा और ध्रुव के पीछे पीछे चली गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी। उस स्क्रीन पर कुछ लोगों की छोटी छोटी वीडियोएं थी। आस्था हैरानी से ध्रुव की ओर देखने लगी और बोली, ये सब क्या है? ध्रुव ने अपनी बात कहना शुरू किया, भाभी आप जानती हैं हम अरमान भाई से कब और किस तरह मिले थे? हम बचपन में एक साथ पढ़ाई करते थे, अरमान भाई हमारे सीनियर थे। मैं आहान से काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ था, आहान और मैं हमेशा एक साथ रहते थे। आकाश भाई और सुमित भाई भी अरमान भाई के साथ पढ़ाई करते थे, लेकिन कुछ सालों बाद वो लोग अलग अलग हो गए। लेकिन जब वो लौट कर आए तब वो एक बार फिर अरमान भाई से मिले, क्योंकि उनकी ज़िंदगी पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी थी। मैं और आहान कभी भी अलग नहीं हुए, हम एक साथ आगे बढ़ने लगे थे, क्योंकि आहान का पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान नहीं था, लेकिन मुझे शुरू से ही कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करने का शौक रहता था, इसीलिए बहुत कम उम्र में मैंने डॉक्टर के क्षेत्र में काफ़ी नाम कमा लिया था। लेकिन मैं फिर भी अरमान भाई के साथ जुड़ा रहा, क्योंकि एक बार आहान के कहने पर मैं उसकी बर्थडे पार्टी के लिए गया था और आहान ने अपनी बर्थडे पार्टी एक क्लब में दी थी। उसने ज़बरदस्ती करके अरमान भाई, आकाश भाई और सुमित भाई को भी वहां बुला लिया था। हम सब ने उस दिन काफ़ी मस्ती की। हालांकि अरमान भाई ने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, वो सिर्फ एक तरफ बैठकर हम लोगों को देखते रहे। और फिर जब उस रात हम पार्टी करके घर लौट रहे थे, तभी अचानक हमारी कार के सामने दो छोटी छोटी बच्चियां आ गई थीं। उस वक्त कार आकाश भाई चला रहे थे। उन्होंने जल्दी ही ब्रेक मारे और उन बच्चियों को देखा तो उन बच्चियों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। हम सब काफ़ी हद तक बौखला गए थे, हमें समझ नहीं आ रहा था कि बच्चों को क्या हुआ है। अब क्योंकि मैं उस वक्त डॉक्टर के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रहा था, तो उन बच्चों को देखते ही मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि उनके साथ रेप किया गया था। वो 7 से 8 साल की बच्चियाँ थीं। अब ये देखकर हमारे खून में आग लगने लगी थी और तभी हमारी नज़र उन बच्चियों का पीछा करने वाले कुछ लोगों पर पड़ी। और अब उन लोगों को देखकर बच्चियां डर के मारे इधर उधर कांपने लगी। तब उस वक्त हम पांचों को वहां देखकर वो आदमी थोड़े से डर गए और हमें देखकर भागने लगे, लेकिन अरमान भाई ने उन सबको पकड़ लिया था। और फिर जब हमने उनसे बंदूक की नोक पर पूछताछ किया, तब हमें पता चला कि वो शहर भर से छोटी छोटी मासूम बच्चों को अगवा करते हैं और उनके साथ गलत काम करके उन्हें विदेशों में भेज देते हैं। उस दिन से हम लोगों का खून खौलने लगा था और उस वक्त उन दोनों बच्चियों की मदद करने के साथ साथ हमने उन लोगों को मौत की घाट उतार दिया था। हमने बड़ी ही बेरहमी से उन्हें मारा था। उस दिन से हमने कसम खा ली थी कि हम जितना हो सकेगा क्राइम के खिलाफ लड़ेंगे और हमारे बारे में कोई सच नहीं जान पाएगा। और हमारे इस काम को किसी एक रूप की ज़रूरत थी, इसीलिए हमने अरमान भाई का नाम डेविल किंग के रूप में चुना था और हर जगह हमने डेविल किंग की दहशत फैला दी थी, ताकि कोई भी गलत काम करने के बारे में सोच ना सके। और जो ये वीडियोस इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं, अभी आप ये वीडियोस देख सकती हैं। हमने एक अलग तरह की वेबसाइट शुरू की थी, जहां पर जो लोग हद से ज़्यादा परेशान हैं, वहां पर वो अपनी परेशानियों के बारे में हमें वीडियोस अपलोड किया करते हैं और फिर अरमान भाई और हम अपने तरीके से उनके परेशानियों को दूर करते हैं। आप इनमें से कुछ वीडियो देख सकती हैं और उस वेबसाइट का नाम द डेविल किंग है, जो कि आहान ने बनाई थी। ध्रुव ने अपनी बात खत्म करके वंशिका की ओर एक नज़र देखा। उसने सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत के बारे में बताया था कि उन्होंने ये डेविल किंग बनने का काम क्यों शुरू किया। अरमान भाई अकेले डेविल किंग नहीं है, बल्कि हम सब भी डेविल किंग हैं और हमें खुशी है कि हम डेविल किंग गैंग का पार्ट हैं। ये बोलकर ध्रुव वहां से चला गया। आस्था काफ़ी हद तक शौक में थी और एक एक करके आस्था ने वहां पर कितनी सारी वीडियोज़ देखना शुरू कर दिया था। वहां पर तरह तरह के अत्याचार किए हुए लोग थे, सबसे ज़्यादा औरतें थीं जिन पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हुए थे, साथ ही साथ कुछ आदमी भी थे जिन्हें औरतों ने परेशान किया हुआ था। हर तरह की वीडियोस देखने के बाद आस्था को इतना तो समझ में आ चुका था कि डेविल किंग ने कभी कोई बुरा काम या गलत काम नहीं किया है। उसने सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की मदद की है जो अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह से परेशान थे, या तो वो अपनी जान दे देते थे या फिर अपने साथ जुल्म करने वालों से जुल्म सहते थे। कुछ पल में आस्था का दिल काफ़ी ज़्यादा हल्का फुल्का सा हो गया था, लेकिन आस्था राजवीर के साथ अरमान का रिलेशन एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जब से उसे अविनाश ने ये बताया था कि राजवीर जिंदल अरमान को अपना चेला बुला रहा था, तो ये बात उसे अंदर ही अंदर आग लगा रही थी। वो किसी भी कीमत पर ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब आस्था ने डिसीजन ले लिया था कि उसे अब आगे क्या करना है। कुछ देर तक रोने के बाद, अपने आप को संभालने के बाद, आस्था ने वंशिका की ओर देखा और वंशिका के हाथ पैरों को खोल दिया, क्योंकि उसे कमरे में वंशिका भी मौजूद थी, जिसके मुंह पर पट्टी लगी हुई थी और साथ ही साथ उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। ध्रुव ने जानबूझकर वंशिका को वहां बैठाया था ताकि वो भी अपनी आंखों के सामने अरमान सिंघानिया का सच देख सके और उसे इस बात का एहसास करा सके कि उसने अरमान सिंघानिया जैसे आदमी पर अटैक करके कितनी बड़ी गलती की है। वहीं अरमान, जो कि उस वक्त सिगरेट के लंबे लंबे कश लेकर हॉल में एक तरफ बैठा हुआ था, उसे जल्दी ही आस्था के कदमों की आहट सुनाई दी। आस्था अरमान के सामने आकर खड़ी हो गई थी। वंशिका आस्था के ही साथ थी। वंशिका ने भी अरमान को देख लिया था, लेकिन आस्था के साथ होने की वजह से वो जानती थी कि अरमान उससे कुछ भी सवाल नहीं करेगा। आस्था ने कुछ पल अरमान की ओर देखा और बिना कुछ कहे वंशिका का हाथ थामकर वहां से बाहर की ओर जाने लगी। अब तो अरमान साथ ही साथ ध्रुव और बाकी सबकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने तो सोचा था कि आस्था की आंखों के सामने जब डेविल किंग का सारा सच आएगा तो आस्था अरमान से माफी मांगेगी या फिर कुछ न कुछ उसे बोलेगी और दोनों फिर एक हो जाएंगे। लेकिन ये क्या, आस्था तो बिना अरमान से कोई भी सवाल किए या कोई जवाब दिए बगैर वहां से वापस जा रही थी। अब आस्था को इस तरह से जाते हुए देखकर अरमान की भौहें आपस में सिकुड़ गई थी, लेकिन वो कुछ सोचकर चुप रहा। अचानक आस्था, जो कि दरवाजे के बाहर जा रही थी, वो जाते जाते रुकी और रुककर एक बार फिर वापस आने लगी। अब आस्था को इस तरह से वापस आता देखकर कहीं ना कहीं सबको चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आती है कि चलो अब आस्था अब फाइनली वापस आ रही है और अरमान से बात करेंगी और मामला सुलझा लेंगी और उन दोनों की गलतफहमी दूर हो जाएगी और दोनों एक बार फिर हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगेंगे। लेकिन जैसे ही आस्था वहां वापस आई, वो सीधा ध्रुव के पास आकर खड़ी हो गई थी और बेपरवाही से बोली, वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन प्रियंका, डिंपल और प्रियंका के बॉयफ्रेंड की जान नहीं जानी चाहिए। हाँ, मैं सजा देने से मना नहीं कर रही हूँ, उनकी जान जाने से भी ज्यादा कोई और सजा हो तो वो उन्हें दे सकते हैं, लेकिन वो सब जिंदा रहने चाहिए। ये बोलकर आस्था वहां से वापस चली गई थी। अब तो ध्रुव के माथे से पसीना निकलना शुरू हो गया था और उसने एक नजर डरते डरते अरमान की तरफ देखा कि ना जाने आस्था के इस तरह ऑर्डर करने पर अरमान किस तरह का डिसीजन लेगा। तभी अरमान हल्का सा मुस्कुराया और ध्रुव की ओर देखकर बोला, उन लोगों को अच्छी खासी सजा देने के बाद उन्हें छोड़ दो और याद रखना, उनकी जान नहीं जानी चाहिए। ये बोलकर अब जल्दी ही अरमान ने भी घर जाने का फैसला कर लिया था।
वहीं आस्था वंशिका के साथ आकर कार में बैठ गई थी। वंशिका और आस्था दोनों के बीच खामोशी थी। वंशिका ने आस्था से झिझकते हुए बोली, मुझे लगता है कि तुम्हें अरमान से बात करनी चाहिए, और वैसे भी उसने आज तक सिर्फ लोगों की मदद की है, किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है। तब वंशिका की बात सुनकर आस्था बिल्कुल खामोश रही। कुछ तो था आस्था के दिल और दिमाग में जो उसे काफी ज्यादा परेशान कर रहा था। जल्दी ही वंशिका के साथ आस्था सिंघानिया मेंशन पहुंच चुकी थी और सीधा नानी माँ के कमरे में जाकर सो गई थी, क्योंकि नानी माँ तो ऑलरेडी सोई हुई थी। आस्था भी वहां जाकर लेट गई। अरमान जैसे ही घर आया और उसने देखा कि आस्था कमरे में नहीं है बल्कि नानी माँ के कमरे में सो रही है, तो वो पूरी तरह से बेचैन हो उठा था। उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, आखिर आस्था ही तो उसका सुकून थी। अब अरमान सीधा नानी माँ के कमरे में साइड पर जो कुर्सी थी उस कुर्सी पर जाकर बैठ गया था और आस्था को सुकून से सोते हुए देखने लगा। आस्था भले ही नींद में थी, लेकिन वो समझ चुकी थी कि इस वक्त वो किसी की गहरी नजरों की तपिश में है, लेकिन उसने एक बार भी आंखें नहीं खोली थी। अरमान न जाने कब तक बैठा हुआ आस्था को इस तरह से सुकून से सोता हुआ देखता रहा और कब कुर्सी पर बैठे बैठे उसकी आंख लग गई उसे पता नहीं रहा। अब जल्दी ही अगली सुबह हो चुकी थी। रश्मि ने पूरे घर की सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली थी। वो जानती थी कि आस्था इस वक्त प्रेग्नेंट है। आस्था ने पहले रश्मि और उनकी शादी की काफी अच्छी खासी तैयारी कर चुकी थी, लेकिन इस बार अब रश्मि की बारी थी। रश्मि सब कुछ बढ़िया काम करने के लिए रौनक को अपने साथ में लगाकर काम करवा रही थी। हल्दी का सारा फंक्शन गार्डन में ही रखा गया था। सिंघानिया मेंशन का गार्डन बड़ा ही खूबसूरत था। सारी तैयारी धीरे धीरे वहां पर होने लगी। आस्था अभी तक सोकर नहीं उठी थी, लेकिन नानी माँ की आंख खुल गई थी और नानी माँ की जैसे ही आंख खुली और उन्होंने अरमान को कुर्सी पर बैठकर सोते हुए पाया तो नानी माँ के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई थी और वो खुश होकर मन में सोचने लगी कि उनका दामाद उनकी गोरी को कितना ज्यादा प्यार करता है और उसको मनाने के लिए रात भर यहाँ बैठ रहा है। नानी माँ दोनों के बीच में नहीं रुकना चाहती थी। फटाफट आंखें खुलते ही नानी माँ कमरे से बाहर निकल गईं। कमरे को बाहर से लॉक कर दिया था।